Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला। प्रकाश जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं।
शुरुआत में पहले हेडलाइन।
बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड द ईयर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स सर्जेस नियरली 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्ड एट 26,130। गवर्नमेंट लॉन्चेस मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन टू बूस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट फुटप्रिंट एंड कैबिनेट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-लेन ग्रीनफील्ड नासिक सोलापुर कॉरिडोर इन महाराष्ट्र।
देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज साल के आखिरी ट्रेडिंग सत्र में मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगभग 550 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी 26,130 पर रहा। सरकार ने आज निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता MAS पहल की शुरुआत की है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज महाराष्ट्र में 6 लेन वाले नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी।
And before we go into our main stories in depth and detail, let's have a look at the disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
रुक करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज साल के आखिरी ट्रेडिंग सत्र में मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि नए साल की खुशी के कारण निवेशकों के बीच उभरते उत्साह ने बाजार में तेजी लाई। दोनों ही सूचकांक मुनाफे के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान तेजी बनाए रखी। इससे तमाम सेक्टरों को चौतरफा सपोर्ट मिला, जिससे ये वृद्धि देखी गई। सेंसेक्स 546 अंक यानी 0.64% बढ़कर 85,221 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 191 अंक यानी 0.74% बढ़कर 26,130 पर रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। मिड कैप सूचकांक में 1% की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप सूचकांक 1.2% रहा।
Benchmark domestic equity indices, Sensex and the Nifty, ended the year's final trading session on a strong note as the new year cheer lifted the markets. The indices opened in positive territory and maintained the momentum throughout the session, supported by broad-based sectoral gains. Sensex surged by 546 points, 0.64%, to close at 85,221, while Nifty climbed 191 points, 0.74%, to settle at 26,130. The broader stock market indices at the BSE also participated in the rally. The mid-cap index gained 1% and the small-cap index jumped 1.2%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुईं। सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में सर्वप्रथम टाटा स्टील 2.4% से अधिक, कोटक बैंक 2.1% से अधिक और रिलायंस में लगभग 1.9% की वृद्धि हुई। घाटे में रही कंपनियों में शामिल सर्वप्रथम TCS 1.3%, टेक महिंद्रा लगभग 0.9% और इन्फोसिस 0.5% गिरा।
Across sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 19 out of 22 sectors edged higher. In the gainers, oil and gas climbed over 2.7%, energy gained nearly 2.3%, and metals rose 1.5%. Among the top laggards, telecommunications dropped over 0.7%, IT dipped over 0.2%, and focused IT lost more than 0.1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,799 companies advanced, 1,413 companies declined and 162 companies remained unchanged.
अब बात रुपये की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 89.87 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.27 पर था।
Well, let's ask the key questions before the new year starts tomorrow. Prakash Chawla ji, the safeguard duty which has been imposed, 3-year tariffs on steel products because of cheap imports from China, Vietnam and Nepal. Metal stocks have gone up by 1.5% Nifty Metal. What has led to this government move now?
Well, the safeguard duty, so to speak, today gave a huge momentum to the metal stocks, as you have seen in the marketplace. Anyways, the metals across different segments have been on a roll for quite some time, whether it's copper or other metals. Because of the geopolitical situations, because of the supply kind of a controls, then decontrols, then with the people, and then overall the sentiment or the momentum around metal stocks have been quite good in the recent past. So far as your safeguard duty is the question on your safeguard duty is concerned, well, the domestic industry has been making this demand for quite some time because there were cases of dumping by especially from countries like China. So there was this demand. So government today seemed to have acceded to this demand. Good for the domestic place at least.
प्रकाश जी, अभी आपने एक कारण बताया मार्केट में आज की वृद्धि को लेकर के। दोनों ही सूचकांकों ने आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है पहले की अपेक्षाकृत, तो और भी कोई कारण इसके अलावा रहे होंगे
आज तो यूं जानिए कि आप जैसे आज 2025 का आखिरी दिन है तो मार्केट हमारे यहाँ सेलिब्रेट करने के मूड में थी
जी।
और ये अच्छी बात है कि लेकिन कैचअप करने की कोशिश कर रही है कि 2025 इतना अच्छा हमारी मार्केट के लिए नहीं रहा और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 जो है वो जो आज रौनक मार्केट में लौटी है
जी।
वो उसको बरकरार रहे, ऐसी रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो आज तो रौनक है, आज तो सेलिब्रेशन कर रहा है मार्केट
जी। ये साल बहुत सारे विशेषज्ञों की राय में जो है वो ईयर ऑफ रेजिलियंस रहा है। ऐसे में आने वाले साल यानी 2026 में आप बाजार की कैसी स्थिति का अनुमान लगाते हैं?
आने वाले शेयरों में आज की जो आरबीआई की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बड़ी ही आई ओपनर है और बड़ा सही मूल्यांकन करती है कि 2026 में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वो आरबीआई की रिपोर्ट रेजिलियंस की बात भी करती है जो आपने जिक्र किया
जी।
और वो आरबीआई रिपोर्ट एक्सटर्नल बाहर के जो चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं, उनको लिस्ट करती है। उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उसमें ट्रेड की टेंशन्स हैं, उसमें करेंसी फ्लक्चुएशन की रिस्क हो सकता है। तो ये सारे रिस्क हैं। तो आने वाले साल में ये उम्मीद करते हैं कि हम वो रेजिलियंस जो है
जी।
उसकी जरूरत पड़ती रहेगी
जी।
और वो हमको मेंटेन करनी पड़ेगी और उसका मेन कैटलिस्ट होगा हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन। हम उसी तरह को अच्छा बरकरार रखें, कुछ भी करना पड़े। सरकार ने पिछले साल, इस साल मतलब 2025 में अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी रिडक्शन किया है और इनकम टैक्स भी छूट दी है और कई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी कदम उठाए। हम उम्मीद करते हैं ये रिफॉर्म प्रोसेस जारी रहेगा और किसी तरह से उपभोक्ता को इंसेंटिव मिलता रहेगा कि और जाके मार्केट डिमांड को इम्प्रूव कीजिए।
प्रकाश जी, आपने क्योंकि रिस्क की बात की तो आपकी राय में हम साल 2026 के लिए कितने तैयार है, क्योंकि भारत का लक्ष्य आने वाले सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का एक जो लक्ष्य है उसके लिए हम कितने तैयार हैं?
देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया, मैंने क्यों आरबीआई की रिपोर्ट का आज ही रिलीज हुई
जी,
इसलिए जिक्र किया कि मैं उस रिपोर्ट को वैलिडेट क्या करना उससे सहमत हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है और उसमें जैसे रिपोर्ट ने जिक्र किया, आने वाले समय में जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिलियंस है हमारी इकोनॉमी की, जो ठीक है चैलेंजेस है लेकिन फिर भी उनको हम निपट लेंगे किसी तरह,
उसके बाद भी पकड़ मजबूत,
हाँ निपट लेंगे और पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे और चारा ही नहीं हमारे पास
जी,
हम उस पकड़ को छोड़ देंगे या थोड़ा सा ढील दे देंगे तो समस्या होगी, इसलिए वो ढील नहीं देनी, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर सेगमेंट्स को, स्टेक होल्डर को इस पकड़ को बनाए रखना पड़ेगा। यही 2026 का मुझे लगता है यही मूल मंत्र होना चाहिए।
Prakash ji, the valuation for 2025 has been maintained because of DII buying into the market. And even today, if you look at the DII in the equity market, they were the net buyers to the tune of 6,542 crore rupees. And the FPIs, once again, net sellers to the tune of 3,492 crore rupees. This is what's happening as far as the equity buying and selling in the market is concerned. They mentioned about RBI's financial stability report. It seems to have pumped the Nifty Bank because that's gone up by 0.7%. It went up by 411 points, the Nifty Bank index itself. So what is driving the bank index right now? Is there going to be a merger of the PSU banks? Is the net interest income of banks going to go up? The earnings really, therefore the valuation. What is going to happen in 2026 when it comes to the banking sector? And how optimistic should one be about PSU banks and private banking?
Well, among different sectors which are on a high note, banking and NBFCs is one of the sectors which remains, because for various reasons, as you said, net interest income, not only the net interest income, the overall balance sheets of the banks, whether it's the private banks, whether even the PSU banks. In fact, the PSU banks have caught the momentum of the market in the last few weeks. There's a momentum around PSU banks. So whether it's the PSU banks, whether it's the private banks, whether it's the NBFC, all these companies, there's a lot of optimism around these NBFC and financial sectors. So 2026 is going to hold a good prospect for this sector, because they are. You take any metric, they have improved, whether it's a non-performing assets, whether it's a capital adequacy ratio, or net interest income, the RBI has cut the interest rates three times in consecutive credit policies. So, and the market, RBI has ensured there's enough liquidity in the system. So the banking remains quite a positive kind of a sector, and we hope, and I'm sure this sector is going to do well even in the coming year.
Oil and gas went up by 2.7% today, and the energy index also went up by 2.3%. Is it to do with the policy of the government, their purchasing from Russia, and of course exploration policy? How is that, all of that, compounding on investor interest in these two indices as far as the last day of 2025 is concerned? And will that continue into 2026? Because what we have seen is that not only has the Sensex and Nifty gone up, mid-cap index has gone up and the small-cap index has gone up.
I'll tell you what, so far as the oil sector is concerned, what is called the OMCs, oil marketing companies, see, if you see the crude prices, the scenario in the crude price, international crude prices, they have year on year, the crude prices have seen a sharp decline. So whenever there's a sharp decline in the crude prices, it augurs very well for our oil marketing company. Their balance sheet improves. There's a less pressure from the domestic constituents kind of a thing. Okay, so one of the reasons the oil marketing companies are doing well, the market remains optimistic around this company, is the stability or even sharp deceleration. Now, expectation is that from here on, in fact, mind you, despite geopolitical challenges, recent challenges from Venezuela, US kind of a face-off, or problems in the Middle East, you still have not seen a kind of a spike in the crude prices, which is very good for oil marketing.
38% we're importing from Russia. Is that going to go up now
Russian story is better left not discussed, because it involves a lot of geopolitical, this versus that, why get into it? But we continue to take our supplies from Russia as also from other countries.
Okay, let's talk about something that does not involve geopolitics. Telecommunications, that went down, in fact, by 0.27% today in a bull market.
Well, that's a kind of technical, maybe sectoral kind of a...
Just a market correction.
Market, technical kind of a correction, sectoral kind of a reshuffle, because majority of the sectors have done very well today.
Well, let's have a look at the market's wrap-up as well now, since this is the last day of 2025.
Sensex and Nifty started the year on a bearish note. February proved particularly challenging, with the Sensex losing over 5.5% and Nifty dropping nearly 5.9%. A major turnaround happened in March. Both indices staged a strong comeback, posting the largest monthly gains of the year. Sensex rose more than 5.7% and Nifty gained 6.3%. The momentum carried through the next 3 months. July and August saw some cooling, but September brought a renewed upswing. September was also the month when the next generation GST reforms took effect. Continuing the upward trajectory, October emerged as the second best month of the year. This was driven by festive season demand and FII inflows. Rising streak extended to November, while December wrapped up the year on a softer note. Market expert Puneet Jain highlighted the key factors that supported the markets this year.
So India and many emerging markets had a rather difficult year in terms of global headwinds in 2025. And despite these challenges, I think we have done very well to see a very steady trend in Indian markets, as well as very good economic growth as far as GDP is concerned. In terms of global developments and headwinds that we had, the biggest change, of course, was in the USA, where we saw a new president take charge. And President Trump came with a lot of flip-flop in U.S. trade policies, in policies towards immigrants, which really disrupted global trade. And of course, it hit Indian industries in certain sectors like textiles. So we had a major disruption in global trade during the year. We also saw at a global level many geopolitical tensions. For example, we had wars in the Middle East, in Europe, and we had our own battle, which was in terms of Operation Sindoor. So all these global situations and headwinds, they did affect prospects for economic growth. But I think India navigated these challenges very well in terms of domestic policy. I think the biggest step that Indian government took was reforms like the GST, which were very significant in terms of boosting confidence among Indian investors and consumers. So it really made a big difference. And we saw that in Q3, the third quarter of the year, there was a very big jump in the GDP growth above 8%, which is almost a huge record. We also had many other good developments. For example, we saw the interest rates coming down in India. And also we saw on the trade front, a number of free trade agreements, FTAs, being signed with countries in the Middle East and in New Zealand, and some talks going on in Europe. So clearly, I think the Indian government policies were very supportive of economic growth. And therefore, of course, and we saw a very big jump in gold and silver prices, which was very helpful to Indian households. So I think overall, if you really look at the situation, we had many challenges in 2025, but because of domestic policies, the direction that we took in terms of economic growth, I think we have done very well. And I look forward to a much better 2026, when all these initiatives will yield better results.
Moving ahead, it will be interesting to watch how markets perform amidst the opportunities and challenges that lie before India in the new year. Ayushi Singh for Market Mantra.
Ruk karte hain agli khabar ki taraf. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार का रुख आज मिला जुला रहा. हांगकांग का हैंग सैंग सूचकांक लगभग 0.9% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.2% नीचे आया. वहीं चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.1% बढ़कर बंद हुआ. इस बीच जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टी के कारण बंद थे. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें तो जर्मनी का डैक्स नए साल की पूर्व संध्या के कारण ट्रेडिंग के लिए बंद था, जबकि आधे दिन के कारोबार में फ्रांस का कैक 0.6% नीचे आया और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% गिरा.
प्रकाश जी, सिंस दिस इज अ मिक्स्ड ट्रेंड इन द एशियन मार्केट्स, द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर 2025, well, the big elephant in the room is Japan, because you know there's a lot of carryover trade. Yen is available at on loan at a very short, at very low rate of interest. Yen is trading at 156.65 to the US dollar, and the Japanese investment into US Treasuries has also been fairly high in the past, but they have been selling those treasuries. Will that interest continue into the U.S. Market? Because they seem to be one of the reasons why the U.S. market, stock market indices have always seen a great deal of liquidity. Is that going to continue in 2026?
Well, despite the optimism around the global financial markets, one of the risks for the global financial markets is, as you rightly point out, what is known as, in the jargonized word, yen carry trade. And you're right, it was so easy to borrow yen at almost zero interest and invest somewhere else and make a neat gain out of it. Now, the Bank of Japan and the government in Japan said, no more. This free ride is over now. Okay, they have already increased the interest rates in Japan, and the Bank of Japan has clearly stated that we will continue to increase the interest rates. So what has happened is, the yen will improve. Those who have borrowed in yen and invested elsewhere, now they have to return the loan in the same yen currency, and then yen will be expensive to buy. So the arbitrage opportunity is going to narrow, if not completely end, and you don't know, this could be a big catalyst for shifting of. So it's one of the possible disruptors in the yen carry trade.
Do you think the interest in U.S. treasuries will continue?
Well, it depends, because it also, U.S. Treasury interest, anyways, the central banks all over the world are cagey about it. That's why you see a huge gain in gold. The central banks are investing rather in gold than U.S. Treasuries, because of the geopolitical reasons, because of the fear factor, that fear of the unknown. So, all these things would be at play in 2026. Be interesting to watch. So, as RBI has listed, after all, a lot of brains would have gone behind this thinking. So, it's all there for us to see.
Well, let's have a look at the U.S. markets now. Major U.S. stock market indices edged down in choppy trade yesterday. Trading volumes remain thin in the holiday truncated week. NASDAQ Composite Index dropped over 0.2% to close at 23,419. Dow Jones Industrial Average slipped 0.2% to end at 48,367. And the S&P 500 lost over 0.1% to settle at 6,896. Meanwhile, minutes from the Federal Reserve's December policy meeting showed that the decision to cut interest rates was taken after a deeply nuanced debate on the risks facing the U.S. economy. According to the minutes, most participants supported lowering the target range for the Fed funds rate, while some preferred to keep it unchanged. Even a few of those who supported lowering the policy rate acknowledged that the decision was finely balanced and that they could have supported keeping the target range unchanged. Even though there's a minor correction in the U.S. stock market indices, it seems to be fairly buoyant. AI powered stocks have done very well, even though you have prominent investors trying to short it like Michael Burry. But that has not in any way disrupted the stock market in the U.S. There's a lot of economic news, employment data as well. How do you see the U.S. economy in 2026?
Well, U.S. economy in 2025, against fears, has done rather well. The U.S. market is on a roll, and beyond AI bubble, so-called bubble. It hasn't proved to be a bubble. You might call it excessive sentiment around it, but it hasn't so far. The AI is a real thing, mind you. So, U.S. market has done very well, to surprise of several people. And one of the best performing markets in the U.S.
जी, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ. सरकार ने आज निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता MAS पहल की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच मजबूत करना है. इसका लक्ष्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों, पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच को मजबूत करना है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि MAS पहल का उद्देश्य संरचित और परिणाम आधारित बाजार पहुंच पहलों के माध्यम से खरीदारों से बेहतर संपर्क स्थापित करना और वैश्विक बाजारों में देश की उपस्थिति को बढ़ाना है। प्रकाश जी, गवर्नमेंट ने मार्केट एक्सेस सपोर्ट को लॉन्च किया है, किस तरह से ये सीधे तौर पर पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों और जितने भी लघु और मध्यम उद्यम है उनको किस तरीके से स्ट्रेट बेनिफिट मिलेगा?
देखिए, उनकी बड़ी जरूरत थी क्योंकि बाजार में इतने चैलेंजेस हैं, वैश्विक बाजार में इतने चैलेंजेस हैं, तो इसका जो स्कीम का बायस है वो एमएसएमई की तरफ है क्योंकि एमएसएमई के जो एक्सपोर्टर हैं वो बड़े एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होते हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब वो टैरिफ 50% बढ़ गया अमेरिका का जी। तो इतने बड़े चैलेंजेस, सपोर्ट तो चाहिए ना सरकार की तरफ से, तो ये सपोर्ट बड़ी जरूरी थी और अच्छे समय पर आई। हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा होगा
जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 6 लेन वाले नासिक सोलापुर कॉरिडोर और ओडिशा में NH 326 के चौड़ीकरण को दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने महाराष्ट्र में 6 लेन के ग्रीनफील्ड नियंत्रित नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बीच बातचीत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बुनियादी ढांचा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के अंतर्गत एकीकृत परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास में सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आज नासिक से सोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत।
प्रकाश जी, ईज ऑफ लिविंग के फॉर्मूला को ये कैसे पोषित करेगा?
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बड़ा कदम है और ये जो हमारा फोकस है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग
जी,
इससे नॉट ओनली ईज ऑफ बिजनेस जरूरी होता है, बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा
जी।
इससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा होगा क्योंकि अभी भी उम्मीद सरकारी अभी आने वाले बजट में और उम्मीद की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। वो जो दिशा थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की, वो दिशा उसी दिशा में जाने की उम्मीद की जा रही है।
लॉजिस्टिक दरों पर भी कोई,
वही लॉजिस्टिक का ही तो है सारा काम, लॉजिस्टिक ही तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है। लॉजिस्टिक इम्प्रूव होगा तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट क्योंकि विश्व बाजार में कॉम्पिटेटिवनेस है ना
जी,
उसको अगर आपने इम्प्रूव करना है तो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कीजिएगा और सड़कों का बहुत
तो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट
तो सड़कों का बहुत बड़ा योग है। सड़क अच्छी होगी तो जो आपका लोड है, कार्गो है, जल्दी पहुंचेगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी। तो वैसे चाहे वो सड़क हो या कार्गो या पोर्ट हो, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 0.4% अप एट $61.61 पर बैरल एंड WTI क्रूड वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 0.5% अप एट $58.24 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बुलियन मार्केट। इन द इंडियन bullion market, the 24 carat gold was trading 1.1% down at 1,35,550 rupees per 10 grams and silver was trading 6.6% down at 2,34,730 rupees per kilogram. A short while ago, very briefly, running out of time, silver, is it going to go up or down?
Well, both silver and gold are going to remain very robust and bullish in the year ahead.
जी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी मार्च अनुबंध वाली 34,553 प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभकामनाओं के साथ, शुक्रिया।
Closing headlines, benchmark domestic stock market indices end year's last trading session on a positive note. Sensex surges nearly 550 points. Nifty settled at 26,130. Government launches market access support intervention to boost global export footprint. And cabinet approves the construction of the 6-lane greenfield Nasik Solapur corridor in Maharashtra. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
Namaskar.
Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।